हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लेकिन झलक, वो अब भी उतनी ही शांत बैठी थी जैसे ये सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। उसके बाद वो बोला था, देखो मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ किसके कहने पर आई हो या फिर तुम्हारे पीछे कौन है, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम मेरा बना बनाया खेल नहीं बिगाड़ सकती। बहुत मुश्किलों से मैंने अपने पैर जमाए हैं। इसके बदले में भी झलक ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। अब तो रणविजय का माथा पूरी तरह से सटक गया था। उसका दिल किया कि अभी इसी वक्त अपनी बंदूक से झलक का भेजा उड़ा दे, लेकिन झलक तो बेहद लापरवाही और अजीब सी शांति के साथ वहीं बैठी हुई थी, जैसे ये सब कुछ उससे जुड़ा ही ना हो। ठीक उसी वक्त आर्यन, जो झलक को देख चुका था और ये सारा तमाशा होते हुए देख रहा था, तुरंत उठ खड़ा हुआ और झलक के पास जाने लगा। लेकिन तभी उसके पिता ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? तुमने देखा नहीं सभी बड़े परिवार उसके कितने ज्यादा खिलाफ हैं? वो लड़की जरूर किसी का मोहरा बनकर यहाँ आई है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसने शादी में भी किस तरह आकर ड्रामा किया था और उसकी वजह से सिद्धार्थ की शादी तक नहीं हो पाई, और आज शायद ये कुछ ऐसा ही नाटक करने यहाँ आई है। अब तुम सबके सामने जाकर उस लड़की की साइड लोगे तो अमीर परिवारों की नजरों में आ जाओगे और फिर सबका निशाना हम लोग बन जाएंगे। हम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिर्फ दूर से तमाशा देखो। वैसे भी नीलामी की बोली तो हम अब और आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन कम से कम ये फ्री का एंटरटेनमेंट तो देख ही सकते हैं, है ना? जैसे ही उन्होंने धीरे धीरे अपने बेटे आर्यन को समझाते हुए ये सब कहा, आर्यन को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। अगले ही पल वो ना चाहते हुए भी झलक के करीब जाकर उससे दो शब्द भी नहीं बोल पाया और वहीं रुक गया। फिलहाल अब उर्वशी जी के लिए सब कुछ संभाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि सिद्धार्थ ने अभी तक किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया था। लेकिन उसका सब्र कब जवाब दे जाए, उससे पहले ही उर्वशी जी तुरंत झलक के पास गईं और उसकी ओर देखकर बोली, बेटा देखो मैं जानती हूँ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत ज्यादा गलत हुआ। पूरे समाज के सामने तुम्हारी इज्जत दो कौड़ी की रह गई, लेकिन तुम इस तरह की घटिया हरकतें करके खुद के लिए कब्र तो खुद ही खोद रही हो। अब तुम खुद अपने आप का तमाशा बना रही हो। देखो तुम्हें संभल जाना चाहिए। अगर तुम जिंदा हो तो अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जियो ना। तुम इस तरीके से यहाँ आकर इतने बड़े नेशनल ऑक्शन को बाधित करने की आखिर क्या जरूरत आन पड़ी? हमें अच्छी तरह पता है कि तुमसे कोई ना कोई ये सब करवा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करने के लिए। बेटा अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहती हो तो जाकर अपनी नई शुरुआत करो। इस तरह के मामलों में तुम्हारे आने का क्या मतलब है? और वैसे भी ये नेशनल लेवल की ऑक्शन है, इसमें तुम्हारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, और जो तुम किराए के बॉडीगार्ड लेकर आई हो उन्हें भी पैसे देकर रफा दफा करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम तुम्हें पैसे दे देते हैं। जैसे ही उर्वशी जी ने इस तरह की बातें की, झलक तुरंत ही उठ खड़ी हुई। उसने अपनी गहरी बड़ी आंखों से सबको देखा और धीरे से अपना चश्मा उतार दिया। चश्मा उतारते ही उसने अपने एक गार्ड की ओर नजर घुमाई। बिना एक पल गवाए वो गार्ड तुरंत झलक के सामने आकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। झलक ने अपने साथ लाए हुए बैग में से एक कागज निकाला और वो पेपर गार्ड को थमा दिया। गार्ड ने बिना कुछ कहे वो कागज लेकर सीधे होस्ट के पास जाकर उसके हाथों में दे दिया। अब वहां मौजूद सभी लोग ये दृश्य बड़ी हैरानी से देख रहे थे। वहीं आकांक्षा को ये सब किसी सस्ती नौटंकी से कम नहीं लग रहा था। वो तुरंत झलक की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, ओ प्लीज झलक, क्या नाटक लगा रखा है? अब क्या ड्रामा करने की कोशिश कर रही हो तुम? मेरे ख्याल से तुम्हें अभी इसी वक्त ये नौटंकी बंद कर देनी चाहिए। काफी है, सबको परेशान कर रही हो। और ये क्या कागज भिजवाया है तुमने अपने किराए के बॉडीगार्ड से होस्ट के पास? झलक ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो वो जानबूझकर सबको पूरी तरह से इग्नोर कर रही हो। वहीं सिद्धार्थ के लिए अब ये सब देख पाना हद से ज्यादा मुश्किल हो चुका था। अचानक वो आगे बढ़ा और झलक के बिल्कुल सामने आकर उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया। फिर वो उसके बेहद करीब झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, बंद करो ये तमाशा, अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। सिद्धार्थ सचमुच एक एक शब्द चबा चबा कर बोल रहा था और उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वहीं झलक भी इस वक्त बिना पलक छपकाए सिद्धार्थ की आंखों में ही देख रही थी। माहौल इतना भारी हो चुका था कि आसपास खड़े लोगों की सांसें तक अटक गई थी। लेकिन इससे पहले कि झलक उसे कोई जवाब देती, ठीक उसी पल झलक के बॉडीगार्ड्स ने तेजी से मूव लेते हुए सिद्धार्थ को चारों तरफ से घेर लिया और बंदूकों की नोक पर ले लिया। एक पल के लिए पूरा का पूरा ऑक्शन हॉल मानो छावनी में तब्दील हो गया था। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लोगों की चीखें हल्के से गूंजकर वहीं थम गईं। ये दृश्य देखकर उर्वशी जी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उन्हें लगा कहीं ये किराए के बॉडीगार्ड गुस्से में उनके पोते की जान ही ना ले लें। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन तभी तक होस्ट झलक द्वारा दिया गया लेटर खोल चुकी थी। जैसे ही उसकी नजर उस कागज पर गई, उसके होश उड़ गए। वो तुरंत माइक लेकर बोली, प्लीज प्लीज सब लोग शांत हो जाइए, यहाँ जरूर कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज कोई हंगामा मत कीजिए। अब सबकी नजरें होस्ट पर टिक गईं। वहीं नैना हैरानी से बोली, गलत फहमी? कैसी गलत फहमी? एक अजनबी लड़की यहाँ आकर ऐसे घुस आई है, इसके पास यहाँ का कोई पास नहीं है, और ऊपर से अपने किराए के बॉडीगार्ड से हमारे दामाद पर हमला करवा रही है, और आप कह रही हैं गलत फहमी? होस्ट ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप लोगों को सच में गलत फहमी हुई है, ये इन्वाइटेड गेस्ट है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, हॉल में बैठे लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ के चेहरे सचमुच काले पड़ चुके थे, जैसे किसी ने अचानक जमीन खींच ली हो। आकांक्षा हल्का सा हकलाते हुए बोली, इनवाइटेड गेस्ट? मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? होस्ट ने तुरंत वीआईपी पास सबको दिखाते हुए कहा, इनके पास ऑफिशियल वीआईपी पास है, इसका साफ मतलब है कि ये इस नीलामी में भाग लेने के लिए बाकायदा आमंत्रित की गई हैं। ये सुनकर सब सच में सकते में आ गए। सिद्धार्थ अब भी झलक के बेहद करीब खड़ा था और उसे घूर रहा था। तभी झलक ने बिना कुछ कहे उसका हाथ कसकर अपनी बाजू से हटाया, अपनी बांह को हल्के से रगड़ा, फिर गार्ड्स की ओर देखकर शांत स्वर में बोली, आप लोग जाकर वहां खड़े हो जाइए। गार्ड्स तुरंत पीछे हट गए। झलक आराम से अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और होस्ट की ओर देखकर बोली, अगर सारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो क्या अब नीलामी आगे बढ़ाई जाए? होस्ट थोड़ा हकलाते हुए बोली, जी मैडम, अभी शुरू करते हैं। वहीं नैना, आकांक्षा और उर्वशी अभी भी स्तब्ध थीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि झलक के पास सच में वीआईपी पास है। ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त पूरा माहौल उसी के इशारों पर चल रहा हो। सिद्धार्थ का हाथ अचानक आकांक्षा ने पकड़ लिया और धीमे स्वर में बोली, इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है, जरूर इसने किसी बड़े आदमी से पास का इंतजाम किया है, लेकिन हम इसे इस नीलामी में हरा देंगे। आखिर ये कितना खर्च कर लेगी? हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और इस लड़की को हम अच्छी तरह जानते हैं, इसके पास तो अपने दम पर एक रुपया भी नहीं है। आकांक्षा के इस तंज के बावजूद झलक का चेहरा पूरी तरह शांत था।
वहीं धीरज जी गहरी सोच में पड़ गए। उनके मन में सवाल उठ रहा था, आखिर झलक के पास वीआईपी पास आया कहाँ से? पूरे शहर में ऐसा कौन है जो खुराना परिवार से दुश्मनी मोल ले सके? फिर झलक की मदद कौन कर रहा है? आर्यन अब अपने पिता की ओर देखने लगा, मानो आंखों ही आंखों में पूछ रहा हो, अभी थोड़ी देर पहले आप इसे घुसबैठिया कह रहे थे, और अब इसके पास वीआईपी पास देखकर इतना अजीब क्यों लग रहा है? वीआईपी पास तो हमारे पास भी है। खैर, होस्ट ने माहौल संभालते हुए कहा, ठीक है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ये सारा ड्रामा हुआ, लेकिन अब हम नीलामी आगे बढ़ाते हैं, हमें उम्मीद है कि अब कोई हंगामा नहीं होगा। फिर उसने माइक संभालते हुए कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं, मिस झलक ने 170 करोड़ की बोली लगाई थी, तो 170 करोड़ एक, 170 करोड़ दो, तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई आवाज़ गूंजी, 180 करोड़। ये आवाज़ सिद्धार्थ खुराना की थी। सभी की नज़रें उसकी ओर उठ गई। आकांक्षा ने तुरंत झलक की ओर देखा, मानो आंखों से चुनौती दे रही हो, हिम्मत है तो मुकाबला करके दिखा। लेकिन झलक ने बस बेपरवाही से अपने कंधे उचकाए, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। झलक की इस शांत प्रतिक्रिया ने आकांक्षा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उसे पहली बार लगा कि शायद ये लड़की सच में कोई बड़ा खेल खेलने आई है, और इस बार मामला उतना आसान नहीं होने वाला।